ॐ शांति। प्यारे बाप दादा की ओर से, सभी दादियों और मधुबन निवासियों की ओर से, आप सभी देश विदेश के ब्राह्मण कुलभूषणों का मधुबन वरदान भूमि में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित रूप से आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, निर्भय होंगे और निश्चिंत होंगे, क्योंकि जिनका साथी है भगवान, उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। भगवान साथ हैं तो फिर भय की तो कोई बात ही नहीं है। हम सबको निर्भय और निश्चिंत बनाने वाले हैं, एक बाबा के बल और भरोसे के सहारे जीने वाले हैं, और यही पाठ बाबा ने हमें प्रारंभ से ही सिखाया है। भक्ति मार्ग में भी देखें तो सबरी ने अपने भरोसे के आधार पे अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी कि राम आएंगे, और भरोसे की जीत हुई। मीरा ने भरोसे के आधार पर विष का प्याला पी लिया, विष भी भरोसे के आधार पर अमृत में तब्दील हो गया। पांडवों को भरोसा था भगवान पे कि भगवान साथ हैं तो जीत होगी। भगवान तो चुटकी ले रहे थे अर्जुन की कि सारी अक्षौणी सेना तो दुर्योधन ले गया, तेरे हाथ तो कुछ आया नहीं, कैसे जीत होगी। अर्जुन ने पूरे भरोसे के साथ कहा, स्वयं भगवान मेरे साथ है तो जीत तो मेरी निश्चित है। और हम जानते हैं महाभारत का युद्ध इस निश्चय के आधार पर जीता गया, भगवान के बल और भरोसे के आधार पर जीता गया। ज्यादा दूर ना जाएं, अपनी दादियों को देखें। गुलजार दादी जी को बाबा ने कहा लखनऊ जाना है सेवा के लिए, दादी को पता नहीं कि लखनऊ कहाँ है, कौन सी ट्रेन में बैठना है, वहां जाके किससे मिलना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, लेकिन एक बल, एक भरोसा। दादी जानकी जी को 5 रुपए बाबा ने दे दिए, कहा कि जाके सेवा करनी है, 5 रुपए में क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ नहीं, एक बल, एक भरोसा। यज्ञ इतिहास हमारी दादियों, हमारे पूर्वजों की ऐसी गाथाओं से भरा हुआ है, और उन्हीं में से एक हमारी प्यारी ईशु दादी जी भी, एक नामी एका नामी के अवतार। मम्मा बाबा जी ने प्यार से मनी प्लांट कहते थे, हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के विषय को, जो एक बल एक भरोसा है, हम भी कैसे ऐसे एक के बल पे जिए, एक से भरोसा हमारा कभी भी डगमगाए नहीं, उसी पर आज की यह सुंदर चर्चा है। आइए अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। ईशु दादी जी को, दादियों को आपने लगभग बचपन से देखा, 69 से लेकर के दादी जी को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दादी जी में आपने क्या देखा, पहले हम दादी जी के विषय में थोड़ा जानना चाहेंगे।
दादी जी को हमने पूर्ण शांत स्वरूप में देखा, क्योंकि अव्यक्त बाबा ने उनको अव्यक्त नाम दिया था, पूर्ण शांता। इधर उधर नहीं देखती थी। लोग जिस चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, परचिंतन न हो, प्रदर्शन न हो, दूसरों के अवगुण न देखे, वो देखते ही नहीं थी कुछ, बिल्कुल अंतर्मुखी थी इन सब चीजों से मुक्त। इसलिए किसी से वैर भाव नहीं, किसी से नहीं, कोई भी यज्ञ में ईशु दादी के लिए कुछ बोलता नहीं था कि उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ नहीं। तो ऐसी ये एक श्रेष्ठ तपस्वी और पवित्र आत्मा के लक्षण होते हैं कि जिसे सब कुछ प्राप्त हो गया हो, वो शांत हो जाते हैं। उनके मन की भाग दौड़, बुद्धि का इधर उधर भटकना सब पूरी तरह शांत हो जाता है। तो ये दादी सचमुच बहुत मानती। मैं तो पिछले कई साल से ज्यादा घनिष्ठता में था, विशेष करके जब से दादी प्रकाशमणि गई थी, तो सब कुछ जो मिलता था उनके पास जाते थे देने, तो बस देखते ही तो खुश हो जाती थी, सूर्य आया है, ऐसे ऐसे हाथ करने लगती थी।
दादी जितनी गंभीर थी पहले, अंत में उतनी ही रमणीक
हो गई। कई साल से उतनी रमणीक थी, 10-12-15 साल से
जी।
तो एक अच्छा जीवन व्यतीत किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी से ज्यादा सेवाएं भी नहीं ली। उनके साथ जो एक रहती थी बहन, वो ही उनकी सेवा करती थी। तो एक सफल सुखद यात्रा करके दादी जी गई हैं। हम सचमुच केवल स्नेह पूर्वक नहीं, सम्मान पूर्वक उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
जी जी, बाबा प्यार से उन्हें मनी प्लांट कहते थे। तो दादी जी मनी प्लांट अब अव्यक्त हो गई हैं, तो बहुत सारी मनी प्लांट उन्होंने लगा दिए हैं।
बिल्कुल, ये तो होता ही है। माँ बाप भी अपनी रचना छोड़ कर जाते हैं, और निश्चित रूप से ये यज्ञ तो भोलेनाथ का यज्ञ है। भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर, मनी प्लांट तो लग ही गए
हैं। जी, एक जो दादियों की खास बात कि बेगरी पार्ट था, हमने सुना कि यज्ञ में केवल 50 पैसे बचे थे और भोजन करने वाले 350-400 लोग, और वैसे ही जब बीमारियों का भी दौर चलता था, कोई दवा नहीं थी, केवल बाबा कभी ढोढ़ा छाछ बोल देते थे, ऐसे में एकदम निश्चय बुद्धि होना, ये कैसे संभव था?
हाँ, बड़ी परीक्षा का काल था वो
जी।
70 लोगों को लूज मोशन है, गर्म कपड़े ज्यादा नहीं है, क्योंकि उधर गर्मी और ठंडी ज्यादा नहीं होती थी
जी।
आबू में माइनस में रहता था टेम्परेचर, उनको आदत नहीं थी इस माहौल में रहने की, हार्ड वाटर यहाँ का। तो लूज मोशन हो गए। अब 70 लोग लूज मोशन में पड़े हैं, क्या हुआ? बाबा ने कुछ गोलियां मंगवाई, पैसा था नहीं, थोड़े से पैसे में थोड़ी सी गोली आई, एक के दो पीस करके एक एक को खिला दी और सभी ठीक हो गए। ये प्रभु चमत्कार ही था
जी जी,
क्योंकि आबू एक छोटा सा स्थान था उन दिनों, टूरिस्ट प्लेस भी नहीं था, और यहाँ दवाई आदियों का, वैसे भी हॉस्पिटल आदि का इतना प्रबंध नहीं था, एक छोटा डॉक्टर रहता था बस। तो बाबा में जिनको निश्चय था वो पार हो गए। अभी डोडा और छाछ खिलाई, और रोग बहुत ज्यादा थे, किसी को दमा था, किसी को लूज मोशन थे, किसी को खांसी जुखाम बहुत हो गया था, किसी को सर्दी बहुत हो गई थी, कोई बुखार में थे, लेकिन भोजन नहीं था। जिनको निश्चय था कि कौन खिला रहा है, ब्रह्मा तो निमित्त, स्वयं भगवान खिला रहा है, वो उसको खाते खाते ठीक हो गए। कईयों के दमा ठीक हो गए, बुखार तो सबके ठीक हो गए, लूज मोशन ठीक हो गए। तो ये बहुत बड़े निश्चय की बात थी।
ये निश्चय ब्राता जी कैसे आया? क्योंकि देखने वाले कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो अंधविश्वासी हैं, इतनी तकलीफ है और ये वैसी चीजें ले रहे हैं जिनकी, जिनसे शायद और बढ़ सकता है, दवाइयां इनके पास है नहीं। तो सोचने वाले ये सोच सकते हैं और कह भी सकते हैं कि ये तो इनका अंधविश्वास है। तो ये विश्वास और अंधविश्वास एक बड़ी बारीक सी रेखा खींच जाती
है। इसमें एक रेखा तो खींचती है। देखिए, अंधविश्वास उसको कहा जाता है कि हमें पता नहीं कौन है, भाई हम ऐसे विश्वास रख रहे हैं कि इस मंदिर का पानी पीने से हमें ये फायदा हो जाएगा, लेकिन क्यों हो जाएगा ये हमें पता नहीं। और यहाँ हमें, उन्हें सबको पता था कि भगवान ने यज्ञ रचा है, हम उसके बच्चे बने हैं, वो हमारी पालना कर रहा है, वो हमें भूखा भी नहीं रहने देगा। ये जानकर ज्ञान युक्त निश्चय था, इसलिए इसको अंधविश्वास नहीं कह सकते। देखो, जो आपने 50 पैसे की बात कही, ये भी इसी तरह है कि यज्ञ में 50 पैसे रह गए। यीशु दादी ने बाबा को कहा, बाबा 50 पैसे बचे हैं, अब क्या करें, इसका क्या लाएं? तब थोड़ा बेगरी पार्ट चल गया था यज्ञ में, यानी सब कुछ खत्म हो गया था। बाबा ने कहा, बच्ची थोड़ा इंतजार करो, 10 बजे पोस्ट आती है। और देखो ब्रह्मा बाबा के द्वारा तो शिव बाबा बोलता था ना, ब्रह्मा तो त्रिकालदर्शी थे नहीं। और 10 बजे जो पोस्ट आई तो उसमें बॉम्बे की एक माता ने जो संबंध में थी, साहूकार परिवार से थी, 10,000 रुपए भेजे। पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आता था पैसा, 10,000 भेजे। उस समय का 10,000 बहुत ज्यादा था, अब के 20 लाख समझ लो, कम से कम 20-25 लाख। तो एक काम सुचारू रूप से चलने लगा और काफी अच्छा हो गया। तो कईयों में थोड़ा संशय भी उठता था, ऐसा नहीं कि नहीं उठता था, क्या होगा, आज ही भोजन नहीं है, कल का तो पता ही नहीं, कहां से खाएंगे, कब तक चलेगा, ये भी तो कोई गारंटी नहीं।
दादा जी की मतलब यहाँ पे ही तो निश्चय की परीक्षा होती है, यहाँ कैसे अच्छा लड्डूल रहा जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण।
हाँ, तो उसमें से कईयों में थोड़ा संशय हुआ, जिनको ज्ञान पूर्ण नहीं था, जो बाबा को ठीक रीति से जानते नहीं थे, जो ब्रह्मा को ही देखते थे, उनको थोड़ा संशय हुआ। लेकिन जो स्ट्रांग थे, स्वयं ब्रह्मा, सबसे बड़ी चीज तो उनकी थी ना, जो जिम्मेदार था, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी। अब बच्चे तो फिर भी खुशी खुशी खेल कूद के भी समय बिता लेते हैं, बाप को तो चिंता होती है ना, माँ बाप को भाई क्या करना है इनके लिए, ठंड लग रही है, कपड़े चाहिए, दूध चाहे तो चाहिए, उसको तो इंतजाम करने की चिंता रहती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा भी ऐसे बेफिक्र बादशाह थे, उनके बोल निकलते थे कि जिसके सब बच्चे हैं वो जरूर इनकी पालना करेगा, करता रहता है, रोज दिखता भी था ना, कर रहा है पालना। तो एक अनुभवों से, एक शिव बाबा को पूरी तरह जानने से, उसमें विश्वास रखने से वो समय पार हो गया।
जी जी, मतलब हम भी अपने ज्ञान को बहुत ही प्रगाढ़ करते चलें और जानते और सीखते चले कि हम भी ऐसे ही अनुभव के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। दादा जी, प्रश्न आए हुए हैं सभी भाई बहनों के, इसी से जुड़े हुए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बाबा कहते हैं एक नामी अर्थात एक से ही सर्व संबंध। कोरोना काल में जो भी हमारे करीबी संबंधी हमें छोड़कर जा रहे हैं, मन बार बार उन्हें याद कर रहा है, उनकी याद को कैसे कम करें, विशेष उसी संबंध से बाबा के साथ का कैसे अनुभव करें।
ये भी देखो, एक ऐसी परीक्षा चल रही है अनेकों के सामने, जिनको ज्ञान नहीं है उनके लिए तो परीक्षा की बात नहीं होती, लेकिन जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है उनके सामने बहुत बड़ी परीक्षा होती है, कि जब उनका कोई चला जाता है तो बाबा में संशय रखने लगते, मेरे पति को क्यों ले गया बाबा, मेरे बच्चे को ऐसे ही क्यों उठा लिया बाबा ने, कई तो कहते मैंने बाबा का क्या बिगाड़ा था, जैसे भक्ति में लोग कहते थे ना, मैं तो बाबा की बहुत सेवा की, तन मन धन लगाया, फिर भी बाबा ने हमें मदद नहीं की। संशय कईयों को उठता है, क्योंकि मैं समाचार आते रहते ये सब। इसमें ये है, सभी को ये एक बात जाननी चाहिए कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है कि उसको किसी ने निश्चित नहीं किया, ऐसे नहीं शिव बाबा ने निश्चित कर दिया या शिव बाबा सबको ले जा रहा है, वो स्वरूप भी नहीं है, वो महाकाल है, वो आखिर में सबको परम धाम ले जाएगा। लेकिन जो रोज मृत्यु हो रही है, ये मनुष्य के कर्मों के आधार से हो रही है। हम ऐसा देख सकते हैं, बहुत लोग कोरोना के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, मास्क भी डबल डबल लगा रहे हैं और बाहर नहीं निकल रहे, बहुत ध्यान दे रहे, तो भी कोरोना हो रहा। कुछ लोग मानते ही नहीं, मास्क भी नहीं लगाते, किसी की नहीं सुनते, उनको नहीं हो रहा है। तो इसमें पीछे कर्मों का खेल भी है, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें इन डिसिप्लिन का पालन नहीं करना है, लेकिन इसके पीछे कर्मों का खेल बहुत काम करता है। तो मृत्यु एक अटल सत्य है, वो जब जिसको जाना है, जिस कारण से जाना है, जहां जाना है, स्थान कारण और समय तीनों निश्चित होते हैं। इसलिए इसमें शिव बाबा को दोष देना, मानो उसमें संशय रख लेना, इससे हमारा जो ईश्वरीय बल है वो कम होने लगता है। इसकी जरूरत नहीं, पहली चीज तो ये इम्पोर्टेंट है
जी।
मैं बहुत पहले से कहता आता हूँ बाबा की ये बात, कि ये समय ऐसा चल रहा है 2020 से और 30 के बीच का ये पीरियड, कि इसमें जो कुछ भी होगा, जो कुछ हो रहा है, उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। रोने धोने से, भयभीत होने से, परेशान और दुखी होने से काम नहीं चलेगा। जैसा होता है कि एक ने शरीर छोड़ दिया, उसके शोक में दूसरा मर गया, कमाने वाला मर गया, तो आगे क्या होगा, बच्चों को कौन संभालेगा। इसलिए बहुत हिम्मत, बहुत ज्ञान युक्त, शिव बाबा में विश्वास, उसके ज्ञान में विश्वास रखते हुए हमें चलना चाहिए। मैं इसे एक बल एक भरोसे की एक दूसरी व्याख्या कर देता हूं
जी।
एक सर्वशक्तिवान से बल लेना और उसका जो ज्ञान है उसमें विश्वास रखना
कि सब कुछ अच्छा होगा।
बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, 50 हो सकती हैं, उनमें विश्वास रखना। इस विश्व ड्रामा का शिव बाबा ने संपूर्ण ज्ञान दे दिया है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्यों ये सब हो रहा है, इसकी एक क्लियर जानकारी दे दी। उसमें विश्वास, उसमें निश्चय कि जो भगवान ने बोला है वो परम सत्य है। अब रही बात उस संबंध से अनुभव करने की, मान लो किसी का पति चला गया, एक तो जो चला गया उसको हमें अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, ये हमें अपना परम पुनीत कर्तव्य भूलना नहीं चाहिए। रोने धोने से हमारे दुखों के वाइब्रेशंस उन आत्माओं को भी दुखी करेंगे। हम शांत हों, इस सत्य को स्वीकार करें। चलो, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसका जवान लड़का चला जाए, कोई भी नारी ऐसा नहीं चाहती कि उसका पति चला जाए, पर ये समय ऐसा है कि बहुतों को जाना है, तो वो नाता शिव बाबा से जोड़ ले। वो पतियों का पति मेरा पति है, प्रियतम उसे कहते हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते रहे, जो हमारा अत्यधिक प्रिय है, वो है ही। इस नाते से इस बात को याद करके फिर उससे योग लगाएंगे तो चित्त भी शांत हो जाएगा। रही बात लड़का चला गया, मान लो लड़का कमाता ही था, परिवार उस पर डिपेंडेंट था, अब एक बहुत बड़ी बात होती है कि अब क्या होगा परिवार का। बाबा को अपना बच्चा बना ले और ये विश्वास रखें कि जो सारे संसार की पालना करता है वो हमारी पालना करेगा, तो कहीं ना कहीं से वो मार्ग दिखा देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा
जी। जी,
इस नाता जोड़ना, उस नाते में विश्वास रखना, उस तरह से योग अभ्यास करना, ये
तो ये सहज हो जाएगा। इसीलिए शायद वो भक्ति मार्ग के जो गायन है, शायद इसीलिए है कि उन्होंने हुंडी भरी, उन्होंने हर प्रकार से मदद की, कोई अंधा गिर गया था गड्ढे में, उसको बाहर निकाला। तो ये सारी व्याख्या मुझे लगता है वर्तमान समय की ही है, यदि हम उस पर विश्वास रखते हैं।
वर्तमान समय की भी है और भक्ति में भी है
जी जी।
और मैं यही कहूंगा कि जो भक्ति में सबको मदद करता है, क्या वो अपने बच्चों को मदद नहीं करेगा? लेकिन जब मनुष्य परेशान होता है, उसमें अविश्वास कर लेता है और उसको गाली देने लगता है, कोसने लगते हैं, और अब हम तुम्हें याद नहीं करेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, गुस्से में चलो, गुस्से में कहना तो ठीक है, अपनों पे ही गुस्सा किया जाता है, लेकिन अगर विश्वास टूट जाए तो बल खत्म हो जाता। निश्चय में बल है, चाहे वो माया को जीतने की बात हो, हमें बल मिलता है, चाहे वो परिस्थितियों को पार करने की बात हो, हमें विवेक मिलता है, बल मिलता है, और हम पार कर लेते हैं।
बिल्कुल, तो ये एक बहुत सुंदर सी बात है प्रत्यय जी, कि हम एक से बल लेते रहें और साथ ही उसके ज्ञान पर पूरा पूरा भरोसा रखें और उसे यूज भी करें। फिर भी प्रश्न उसी प्रकार के आए प्रत्यय जी, मैं चाहूंगा कि जो प्रश्न है, यद्यपि आपने सार रूप में तो उत्तर दे ही दिया है, परिवार का यदि हर सदस्य जिनके साथ हम रहते हैं, यदि वो सभी अभी कोरोना पॉजिटिव है, तो हमारा मन न चाहते हुए भी निगेटिव हो जाता है, निश्चय डगमगाने लगता है।
हाँ, देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये नहीं होना चाहिए, होता है
जी,
मनुष्य मनुष्य है, और जब सबको ही हो जाए, कौन किसकी सेवा करे, तो इसमें सबसे अच्छी बात ज्ञानियों के लिए ये है कि अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी बाबा को सौंप दें, योग के वाइब्रेशंस अपने परिवार में फैलाएं और ये संकल्प रखें सब ठीक हो जाएंगे, इसमें निगेटिव न हो, ताकि घर में हमसे निगेटिव एनर्जी न फैले। निगेटिव एनर्जी फैलती है डर के संकल्पों से, अब ये परिस्थिति ऐसी है, लोग समाचार सुन लेते हैं, सात परिवार में सात लोग थे, सातों मर गए, उस परिवार में आठ लोग थे, आठों मर गए, परिवार में पांच थे, पांचों मर गए। तो ये सब सुन के मनुष्य का निगेटिव होना बड़ा स्वाभाविक है। मनुष्य सोचेगा कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए, ये नहीं सोचना है। बाबा के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दें, तुम्हें ले जाना हो ले जाओ, रखना हो रखना, हम तुम्हारे, यहां भी तुम्हारे, वहां भी तुम्हारे, और संकल्प करें मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वाइब्रेशंस फैलाएं, जो सेवा भाव है वो रखें। आजकल तो ये बात बहुत हो रही है कि घर में रखो, सब लोग हंसी मजाक भी कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में गए माना आएंगे नहीं, पैसा भी बहुत खाली हो जाएगा आपका, इसलिए घरों में बहुत सारे इलाज होते हैं, डॉक्टर की राय से इलाज करो और अच्छे एनर्जी अपने परिवार में फैलाओ तो सब ठीक हो जाएंगे। हुए हैं कईयों को, हम हमारे पास हमारे ज्ञान वालों के में समाचार आते हैं, पूरे परिवार को हो गया, सब ठीक हो गया। सेंटरों में सारी बहनों को हो गया, पांच सात को, एक जगह तो 20 बहनें एक साथ रही हुई थी, 20 को हो गया, सब ठीक हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं कि ठीक नहीं होंगे, ठीक हो रहे हैं और ठीक होंगे, ये संपूर्ण विश्वास रहे।
जी जी जी, मतलब खुद पर भी विश्वास और प्रभु पिता तो हमारे साथ हैं, उन पर भी विश्वास रखें। कईयों ने जो ज्ञान से नहीं जुड़े हुए उन्होंने भी बताया जी अपने विश्वास के आधार पे भी इसे जीता है। हाँ। कि 95% लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, लेकिन इस विश्वास से कि 5% तो ठीक है, उन्होंने अपने आप को वो कर लिया। तो हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। जो दो तीन बातें आपने कही वैसे ही प्रश्न रहता जी, यदि घर का जो कमाने वाला था वही यदि चला जाता है तो फिर एक निश्चय डगमगा जाता है, या फिर हमारे जो घर वाले हैं हॉस्पिटलाइज हैं उन्हें हमें देखने नहीं दिया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो मन में ये संकल्प उठते हैं कि पता नहीं उनके कुछ दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, उन्हें क्या हो रहा है, तो ये सारी स्थिति संकल्प चलाते हैं।
बिल्कुल, ये बहुत प्रैक्टिकल है और मैं भी इसमें कहूंगा कि ये हमारे मैनेजमेंट की या सरकारों की बहुत बड़ी गलती है। हमारी केंद्र सरकार को ही ऐसा कुछ सिस्टम सेट कर देना चाहिए कि पेशेंट की रिपोर्ट बाहर मिले, भले ही परिवार वाले उसके पास न जाएं, लेकिन उन्हें पता तो चले उनके पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, वो जिंदा है नहीं है, उसे पानी मिल रहा नहीं मिल रहा, उसे भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसकी ट्रीटमेंट ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऐसा सीसीटीवी भी लगाए जा सकते हैं, बाहर सब दिखता रहे, बहुत सारे साधन है आजकल विज्ञान के, इसलिए मैं तो सरकारों से रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा प्रबंध करें, नहीं तो इससे क्या होता है मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। अब किसी का पति ही हॉस्पिटल में हो, पत्नी को कुछ पता न चल रहा हो, मृत्यु हो गई तभी पता दे रहे हो कि मर गया ले जाओ, तो ये बहुत बुरी चीज, कोरोना से भी भयानक ये स्थिति है
जी।
बाप बच्चों का हॉस्पिटल में हो और बच्चे तड़फ रहे हो और याद करके रो रहे हो और उन्हें कुछ पता न चल रहा हो कि हमारे बाप के साथ हो क्या रहा है, कोई देख भी रहा है या नहीं, तो ये सचमुच हमारी सरकारों का मिसमैनेजमेंट है, हॉस्पिटल्स का मिसमैनेजमेंट है। मैंने देखा एक जगह हमारी बहन एक हॉस्पिटल में है, उसके भाई ने फोन किया, डॉक्टर साहब हमें तो देखना है, नहीं तो आप बाहर आओ और हमें सब कुछ बताओ। डॉक्टर बाहर आया, पूरी रिपोर्ट बताई, पूरा सब कुछ बताया और कहा दूर से 10-15 फीट से आपको दिखा देते हैं
जी।
तो दिखाया उनको, तो एक शांति हो गई, उन्हें अपने सारे परिवार को बताया लंबे चौड़ा, तो सब शांत हो गए, नहीं तो मानसिक रूप से एक सदमा, एक डिप्रेशन। और मुझे यही लगता है कि इस गलती से डिप्रेशन बहुतों को हो जाएगा
जी, जी।
इसलिए सरकारों को ध्यान देना चाहिए, ऐसा प्रबंध करें। इसमें क्या है, डॉक्टर्स लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं ना, थक गए हैं, चिड़चिड़े भी हो गए होंगे, नर्सेज ये वो, कोई उनके बारे में पूछता हो कि हमारा, उनको पता भी नहीं उनका पेशेंट है
जी,
कौन?
वही बात मैं कहने वाला था। बताया जी, डॉक्टर्स बेचारे इतने इतने 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे का ही काम कर रहे हैं और उन्होंने किट पहनी हुई है, उसमें पसीने से वो लथपथ हैं, उसमें वो फोन भी अटेंड नहीं कर सकते, उनको फोन किया जाता है तो कई बार सामने वाला ये सोचता होगा कि वो हमारा फोन क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कैसी स्थिति में कार्य कर रहे हैं, हमें इस चीज को भी सोचना और समझना जरूर चाहिए।
ये तो सरकारों की जिम्मेदारी है, कैसा कुछ प्रबंध, सब चीजों का प्रबंध होता है, अगर ऑक्सीजन का प्रबंध हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता कि परिवार वालों को पूरा समाचार मिलता रहे, ताकि उन्हें आत्मसंतुष्टि रहे, उन्हें विश्वास रहे कि हमारे पेशेंट के साथ ठीक व्यवहार हो रहा है। नहीं तो लोग हॉस्पिटल ले जाते भी डरते हैं और कईयों का परिणाम ये हो रहा, घर में उनकी मृत्यु हो जाती है।
जी जी, चलिए ये सरकार व्यवस्था करे, मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से हो और ये कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन मान लीजिए अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, हमारे कोई प्रियजन इस अवस्था में है, यहाँ जो हमारा मदद करेगा बाबा की कैसे मदद?
हाँ, अगर ऐसी परिस्थिति है ही कि आपको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, और मान लो ये भी अनाउंस हो गया कि हॉस्पिटल के पास एक घंटे की ऑक्सीजन है, ये भी तो आजकल बहुत हो रहा है, और कुछ पता नहीं चल रहा है, तो बहुत अच्छा जो हमारे पास साधन है राजयोग, उसके वाइब्रेशंस पेशेंट को दिए जाएं योग अभ्यास करके, और कुछ सुंदर संकल्प भेजे जाएं। मान लो ये कहा गया भाई एक घंटे की ऑक्सीजन है, ना आई तो क्या हाल हो जाएगा, वो संकल्प करें एक घंटे से पहले 45 मिनट में ऑक्सीजन सबको प्राप्त हो जाएगी योग युक्त होकर, और हमारे पेशेंट को सब कुछ ठीक मिलेगा, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इनके साथ ट्रीटमेंट या इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, तो योग अभ्यास करते हुए ये संकल्प करेंगे बहुत अच्छा होगा। दूसरे भी कई तरीके हैं, इसको वो कर सकते हैं जो बहुत अच्छे योगी हैं, कि शिव बाबा का आह्वान करें और उनको वहां भेज दें खुदा दोस्त बनाकर, कि आप जरा जाओ उनकी संभाल करो, कुछ कमी हो तो पूरा करके आओ, उन्हें वाइब्रेशंस देकर आओ, बाबा की ओर से भी ये काम होगा। और जो और अच्छे योगी हैं वो फरिश्ता स्वरूप धारण करके वहां पहुंचे सूक्ष्म रूप से, उन्हें वाइब्रेशंस दें, उन्हें अच्छे संकल्प दें, तो उनका चित्त भी शांत हो, क्योंकि बाहर वालों का ही नहीं पेशेंट का चित्त भी अशांत होता है कि किसी को पता नहीं चल रहा है, हम किसी मिल नहीं पा रहे हैं, वो बहुत एक्चुअली कोरोना से बड़ी बेचैनी वो होती है मनुष्य की, ये डबल बेचैनी के कारण लोगों की डेथ हो रही है। तो ये दो अभ्यास हम राजयोग के द्वारा कर सकते हैं।
जी जी जी, और ये एक बहुत अच्छी सी चीज है ब्रदर जी, कि अभी ब्राह्मण परिवार भी पूरी तरह से योग तपस्या में लगा हुआ है, सकाश दे रहा है, सभी ग्रुप्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से ही, भले मधुबन की ओर से भी सुंदर बातें जा रही हैं, अच्छी तपस्या का एक माहौल।
बिल्कुल, हमारा सकाश ग्रुप और स्पार्क का एक बहुत अच्छी, सवेरे से और रात को भी बहुत अच्छे योग के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। हम अपना स्पिरिचुअली कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं हमारी संस्था, और व्यक्तिगत रूप से इस तरह के अभ्यास करके हमेशा अच्छे वाइब्रेशंस दिए जाएं, तो अच्छे वाइब्रेशंस का परिणाम अच्छा होगा।
बिल्कुल बिल्कुल प्रति जी, एक और ये प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ कि ये भी देखा जा रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे जो बाबा के पुराने बच्चे थे वो भी अब देह त्याग रहे हैं, और कहीं 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 ना कहीं कारण ये भी बन रहा है कोविड का, तो बाबा अपने ऐसे सपूत बच्चों की सहायता नहीं करते क्या? और ऐसा संकल्प मन में आ जाता है कि जब इतने अच्छे बच्चे जा रहे हैं तकलीफ पाकर, तो फिर हमारा क्या होगा?
इसमें बाबा की जो मदद का जो स्वरूप है वो अलग है, हम भगवान की गतिमति को सभी लोग नहीं समझते, केवल श्रेष्ठ योगी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी ही समझ सकते हैं वो किस तरह मदद कर रहा है। मान लो एक व्यक्ति का मृत्यु का समय आ गया है, अब उसकी मदद इस रूप से होगी कि वो देह त्याग करे सुखपूर्वक, वो देह त्याग करे मेरी याद में, वो देहधारियों को याद करते हुए देह त्याग न करे, तो अंत में उसके पुण्यों के फल स्वरूप वो उसको ऐसी स्थिति में ले जाएंगे कि न उन्हें पीड़ा होगी और संसार भूल जाएगा। ये है सबसे बड़ी मदद भगवान की। दूसरा, मेरी ये बात सुन के कोई घबराए नहीं, उसको बहुत आत्माओं के ऊपर जरूरत है, क्योंकि उसे युग बदलना है, उसे देवताओं को इस धरा पर उतारना है, उनके माँ बाप को पहले से तैयार करना है, इसलिए वो कुछ आत्माओं को ले जाएगा जरूर। अब वो ले जाएगा या ड्रामा अनुसार ये खेल ही बना हुआ है कि बहुत पवित्र आत्माओं को, श्रेष्ठ योगियों को, ब्राह्मणों को जाना ही होगा देवताओं को जन्म देने के लिए, अगला कार्य करने के लिए। इन एडवांस सतयुग की जो स्थापना होगी उसके लिए इन्हें जाना ही है। रही बात अंत में पीड़ा होना या न होना, ये हर एक मनुष्य की मनोस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन बाबा की मदद बहुत ज्यादा होती है, जो उसके अच्छे बच्चे हैं ईमानदार, जो उसके कार्यों में निष्काम भाव से लगे रहे हैं, जिन्होंने सचमुच उसके कार्यों को सफल किया है, इसका परिणाम उनको वो अंत में देता है। मुझे याद आ गई बात, एक बार भोली दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा मैं तो योग करती नहीं, सेवा सेवा में रहती हूँ, तो मेरा क्या होगा। हम भी थे, हम तो छोटे थे, बाबा ने तो एक राज बता दिया था कि जो बाबा के कार्यों को सफल करते हैं, अगर वो 75% तक पहुंच गए तो 25% मदद उन्हें बाबा देके पूर्ण कर देता है।
अरे वाह।
और उनको कहा था कि तुम्हारे तो सेवा से और गुणों से ही बहुत नंबर मिल रहे हैं, ठीक है बाबा को याद भी किया करो, तुम तो ज्ञान का स्वरूप हो ही, जो ज्ञान सुनते हैं वो तो लड़ते भी रहते हैं, तुम तो ज्ञान का स्वरूप हो। तो ये बाबा की मदद भिन्न भिन्न तरह से मिल रही है।
जी जी, ये आपने एक सुंदर सी बात कह दी कि हम 75 तक तो पहुंच जाएं जोर लगा के, 25% बाबा की ओर से मिलेगा। तो सचमुच वो जो एक चीज है, हम शायद, मुझे लगता है हम एक कालदर्शी होकर कई बार देखते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है समर्पित या पुराने बच्चों के साथ भी, लेकिन वो त्रिकालदर्शी स्थिति यदि हो तो सचमुच बाबा की मदद को हम समझ पाते हैं,
हर चीज कल्याणकारी नजर आएगी।
जी जी जी, पता जी इसमें है कि इन परिस्थितियों के बीच यदि मेरा मन हलचल में आ रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा कि मुझे बाबा पर निश्चय नहीं है, भरोसा नहीं है?
मन के हलचल में आने के कई कारण होते हैं, या तो मनुष्य ने ब्राह्मण बनने के बाद बहुत अच्छे कर्म न किए हों जैसे बाबा चाहता है, वो कर्म मनुष्य को डराते हैं। आजकल ये जो भय फैलता जा रहा है ना, ये कोरोना के कारण तो हो ही रहा है, पर मनुष्य के पाप भी उसको डरा रहे हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड में भय भरा हुआ रहता है पाप कर्म के कारण। मान लो एक चोर चोरी करने गया है, वो भयभीत तो है ही ना, भले ही वो एक्सपर्ट चोर है, कहीं पकड़ा गया कहीं देख लिया तो क्या होगा, तो वो भय सब कॉन्शियस माइंड में भरा रहता है, तो वो भय अब बढ़ रहा है। तो अपनी स्थिति अगर हलचल में है, बहुतों की है, बहुत लोग भयभीत हैं, क्या होगा, उन्हें ये भी नहीं कि क्या होगा, उन्हें ये पता है कि बाबा हमारे साथ है, फिर भी एक अनचाहा भय उन्हें सता रहा है। ये फोन भी एक दो रोज आ जाते हैं, तो वास्तव में ये पूर्व जन्मों का भी इफेक्ट है, कहीं भय हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा समा गया हो, हमने कोई ऐसे कर्म कर लिए हो पूर्व जन्मों में, बहुतों को सताया हो, भयभीत किया हो, तो उसका रिटर्न भय के रूप में इस समय आता है। लेकिन हम मास्टर सर्व शक्तिवान का बहुत अभ्यास करें, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं कभी मरते नहीं, मरना तो मेरे लिए एक वस्त्र उतारने जैसा खेल है, ज्ञान का बहुत अच्छा चिंतन करें, बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और बुरा भी हुआ तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा होगा। ऐसे ज्ञान का चिंतन करते बेफिक्र बादशाह बनेंगे तो स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं बार बार कहता हूं, जो कुछ होगा उसे स्वीकार करने की आदत डालें, और जो कुछ होगा उसे साक्षी भाव से देखने की भी प्रैक्टिस करें।
जी जी, ये ज्ञान तो सबके पास है ही ब्राता जी, फिर भी क्योंकि बाबा पे बहुत अधिकार रखते हैं ना, हुज्जत रखते हैं, तो इसलिए उसी को तो कह सकते हैं, और तो कोई हमारी सुन नहीं रहा है। तो इसलिए एक अगला प्रश्न ये आया है कि बाबा कहते हैं हिम्मतवान बनो तो बाबा की मदद मिल जाएगी, हिम्मत का एक कदम मदद के हजार कदम मेरे, लेकिन अभी मन में ये भाव आता है वर्तमान समय के अनुसार कि बाबा की मदद मिले तो मेरे अंदर हिम्मत आए, मेरा बल बढ़े, तो क्या थोड़े समय के लिए रिवर्स नहीं हो सकता?
हो जाता है, बाबा अपने बच्चों को मदद करता है। बाबा कहाँ करते थे, जब बाबा को लोग कहते थे ना बाबा विनाश नहीं हो रहा है, कि विनाश तो करा दें, सहन कर पाओगे? बाबा नहीं चाहता जब विनाश हो तो मेरे बच्चे भी तड़फते रहें। तो वो तो माता पिता है ना, अपने बच्चों को तड़फता देखकर शक्तियां देता है, वाइब्रेशंस देता है, लेकिन यदि हम उससे जुड़े हुए नहीं होंगे, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, तो हम उसकी मदद को रिसीव कहाँ करेंगे। रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनने चाहिए, उसकी मदद ईश्वरीय महावाक्यों से हमें प्राप्त होगी। लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे उदास निराश हिम्मतहीन हो जाते हैं, मुरली नहीं सुनते, सवेरे नहीं उठते। तो बाबा बहुत पहले एक चीज कहा करते थे कि मैं सुप्रीम टीचर बनकर आया हूँ, और टीचर का नियम नहीं है कि एग्जाम के समय वो मदद करेगा। एग्जाम के समय तो किसने क्या तैयारी की है वो बच्चों को खुद लिखना होता है, पेपर देना होता है। उस टाइम मैं अब हूं साथी, तब हो जाऊंगा साक्षी। तो वो समय बढ़ रहा है, लेकिन बाबा तो साथी है जिन्होंने लंबा समय उसको अपना साथी बनाया है। सच तो ये जिन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, क्योंकि बहुत लोग ढीले भी रहे ना, भगवान बोलता रहा, सुनी अनसुनी करते रहे, अपने धंधों में लगे रहे, उलझनों में लगे रहे, लड़ाई झगड़े में लगे रहे, कोई इम्प्योरिटी में लगे रहे, लेकिन जिन्होंने सब कुछ अच्छा किया है उन्हें तो अंत तक भी उसका साथ मिलता ही रहेगा।
जी जी जी। अब मान लीजिए हमने वो नहीं किया है, अब मैं अलबेलेपन में रहा, मैंने टाइम वेस्ट किया, मैं इधर उधर घूमता फिरता रहा, लेकिन अब मेरी आत्मा जागृत हो गई है, अब मैं पुरुषार्थ भी अच्छा चाहता हूँ और बाबा की उस मदद को भी लेना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ?
रोज सवेरे उठ के बहुत अच्छा योग करें, आप स्ट्रिक्टली श्रीमत का पालन करें, प्योरिटी को स्ट्रिक्टली अपना लें और अच्छा योग अभ्यास करें। अगर योग अभ्यास लग जाए, योग होने लगे, तो बेटा पार हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है आजकल जो बाबा कहते थे ना, लंबे काल का पुरुषार्थ चाहिए। तो जिन्होंने लंबा काल अच्छा बिताया है वो अब अच्छे योगी बन गए हैं और बन जाएंगे, और जिन्होंने लंबा काल गंवाया है वो चाहते हुए भी योग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी का योग लगता है, उसकी भिन्न भिन्न विधि हम सुझाते ही हैं, सवेरे कर लो, 10-15 मिनट बैठ के 2-4 बार कर लो, थोड़ा अंतर्मुखी हो जाए और पास्ट को भूल कर फिर से जोड़ लगाएं, तो किसी हद तक पहुंच ही जाएंगे।
जी जी जी। मतलब अपना प्रयास, पुरुषार्थ, हिम्मत रख के जारी रखना चाहिए। दादा जी, दादी जी ने भी 8 घंटे योग के लिए विशेष कहा था, और इस बार भी हम लोगों ने भी अपने ग्रुप में, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सभी लोग अपने योग के चार्ट के लिए विशेष करके प्रयास कर रहे हैं। 8 घंटे योग का चार्ट हम लोगों ने भी ग्रुप में दिया है। तो प्रश्न है कि इतनी परीक्षाओं के बीच क्या 8 घंटे योग का चार्ट रखना संभव होगा? घर वालों को हमें संभालना होता है, और साथ ही कई बार और भी कई प्रकार की चीजें होती हैं। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को तो हम बैठ के कर लेते हैं, बाकी फिर कैसे इस चार्ट को पूरा किया जाए?
देखिए, योग बैठ के कर लेने की बात ऐसी थोड़ा है कि एक्सरसाइज है हमने कर ली, योग हमारा कितना लगा, मन बुद्धि कितने एकाग्र हुए, सारा खेल उस पर है। मैं पहले तो सबको सावधान करूंगा, कोई ये ना सोच ले 8 घंटा बैठ के योग करना है, ये बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आप 8 घंटा लगातार बैठते हैं, 8 दिन से ज्यादा नहीं बैठोगे, फिर कमर पकड़ के खाट पे आ जाओगे। एक बहन ने मुझे सुनाया, मैं 2 से 6 रोज बैठती थी, अब कमर दर्द इतना हो गया अब बैठा ही नहीं जाता। मैंने कहा तुम्हें किसने बता दिया था? कि बस लोग कहते थे बैठ के योग करो, मैंने उनकी मान ली। मैं तो सबको एक बात कहता हूँ, बैठने वाले योगी कभी योगी बन ही नहीं पाए, क्योंकि हमें केवल योग नहीं करना, योगयुक्त जीवन बनाना है। इसलिए चाहे 8 घंटे योग की बात हो, चाहे 4 घंटे योग की बात हो, 8 घंटे योग हम जानते हैं सबके बस की बात नहीं है, लेकिन 4 घंटे योग तो हर कोई कर सकता है। कर्म योग करें, अधिक से अधिक 2 घंटे बैठें, और मैं तो राय दी थी कि 10-10, 15-15 मिनट 3-4 बार बैठ जाएं, सवेरे से हम बैठ जाएं 1-1 घंटा, बाकी 10-10 मिनट बैठेंगे ना, सोने से पहले 10 मिनट, मुरली के बाद 10 मिनट, दिन में 1-2 बार 10 मिनट, तो काफी अच्छे अनुभव हो जाएंगे। क्योंकि योग एक ऐसी चीज है, उसमें जब तक रस न लगे आत्मा को बैठने की भी इच्छा नहीं होगी। और कर्म योग का प्लान बनाएं, भोजन बनाते हुए क्या करेंगे,
ये प्लान दादाजी भेजा गया सभी को कि अमृत वेले से रात तक
उसको फॉलो करें।
जी जी जी।
तो कर्म योग होने से एक तो थकान नहीं होती, काम जल्दी होंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमें सुख मिलेगा, और ब्रेन को, बॉडी को जो हम अच्छे अभ्यास करेंगे चलते फिरते, एनर्जी मिलती जाएगी और हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। बैठ के थक गए फिर कामकाज की जल्दी, वो तो क्या होता है भाई, काम काज जल्दी करो, फिर 1 घंटा योग में बैठना, जल्दी करो जल्दी करो, तो वो जल्दी करो मानसिक रूप से भी थका देता है, शारीरिक रूप से भी थका देता है। इसलिए कर्मों को एंजॉय करें, योग युक्त कर्म करके, तो योग सारा दिन हो सकता है।
बिल्कुल, मतलब लक्ष्य यही हो कि सारे दिन हम कर्मयोग का सुंदर अभ्यास करें। घंटे घंटे का भी चार्ट सबको भेजा गया बेटा जी,
बिल्कुल
और एक प्रारूप भेजा गया है जिसको इजीली किया जा सकता है कि 8 घंटे आप कैसे सहज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम चुराना या टाइम निकालना निकालना ये तो अपने हाथ में है। यदि थोड़ा सा टेंशन रखा जाए तो मुझे लगता है सहज हो जाएगा। लेकिन जो बात एक आपने पहले कही कि योग लगना चाहिए, तो कई बार हम ऐसी प्लानिंग तो कर भी लेते हैं लेकिन वो योग का रस नहीं आता, योग लगता नहीं, या हमने प्लान किया कि मुझे करना है लेकिन वो रात को जाके याद आता है कि अरे ऐसी ऐसी प्लानिंग हुई थी लेकिन हुआ कुछ नहीं, भूल गए हम, तो यहाँ क्या किया जाए?
इसमें ये बात बहुतों के लिए है, बहुतों की समस्या ये है कि इस तरह योग लगता नहीं है और भूल जाते हैं। वही बात जिनको आदत नहीं है, जो कर्म कॉन्शियस रहे हैं लंबा काल, अब बिजनेस में हैं, दुकान पे गए, फिर दुकान के अलावा काम धंधे के अलावा कुछ भी याद नहीं है, तो उनको तो थोड़ी कठिनाई हो रही है। और बाबा एक बात कहते थे मुरलियों में कि जो व्यक्ति सारा दिन बाह्य मुखी रहता है, ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो सवेरे अगले दिन माया उससे बदला लेती है, उसे योग ही नहीं करने देती कि तुमने भगवान की नहीं मानी, अब मैं तुम्हें ठीक करती हूं। इसलिए सारा दिन, इसका अच्छा तरीका यही है, योग की डेफिनेशन एक दूसरे रूप से समझ लें, स्मृति स्वरूप रहना। तो ऐसी दो स्मृति ले लें सारे दिन के लिए, तीन ले लें बस, कोई एक भी ले सकता है कि मुझे आज सारा दिन ये अभ्यास करना, जैसे मैं आत्मा हूं और मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं।
मतलब बहुत सारी चीजें लेने
बहुत
की
सारी
बजाय
चीज
एक ही ले
एक
ली जाए।
ले लो, दिन में बहुत बार याद कर लो, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे मन शांत होगा, बुद्धि थोड़ी साफ होगी, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों बहुत अच्छी चाहिए योग अभ्यास के लिए। तो अभ्यास करते करते स्मृति, मान लो स्मृति ले ली, मेरा 5,000 वर्ष का ये पाठ पूरा हुआ, अब मुझे देह छोड़कर वापिस जाना है अपने धाम, और बैठ गए परम धाम में, 1 मिनट में चक्र लगा लिया, तो मन शांत रहेगा, बुद्धि योग युक्त रहने के लिए अपने को तैयार करेगी, और मन की जो भटकन है वो भी खत्म होगी, और मन एक ऐसी शांत और आनंद से भरी स्थिति में रहने लगेगा कि धीरे धीरे ऐसा करने से बैठने पे योग लगने लगेगा। धीरे धीरे करना चाहिए,
जी।
दस दस मिनट बैठो, सवेरे आधा घंटा कर लिया, शाम को आधा घंटा कर लिया, फिर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे स्थिरता आएगी बढ़ तो आप ही जाएगा, मन ही करेगा कि अब हम ज्यादा बैठें।
कई बार इस चीज को रूप भारी रूप में ले लेता है। चलिए एक लक्ष्य तो दे दिया जाता है कि 8 घंटे किया जाए, दादी जी की तरफ से भी जैसे भेजा गया, लेकिन नहीं हो पा रहा होता तो एक अलग प्रकार का हम दबाव महसूस करने लगते हैं या डिसहार्टन हो जाते हैं कि हमसे शायद नहीं हो पाएगा, हमारा भाग्य नहीं है, या आदि आदि इत्यादि। तो ऐसी जो एक दिल शिकस्त वाली फीलिंग आ जाती है, वहां क्या क्या?
नहीं, इस दिल शिकस्त को भी हमें समाप्त करना है, और अगर किसी ने योग आधा घंटा ही रोज किया हो तो 8 घंटे उसके लिए वैसे ही कठिन है जैसे पढ़ाई में कोई स्टूडेंट थर्ड डिवीजन वाला हो और उसे कोई कहा जाए 90+ मार्क्स लाने हैं तुम्हें, तो उसको तो टेंशन हो जाएगा ना, इसलिए वो थर्ड से सेकंड में आएगा, फिर कुछ समय बाद फर्स्ट डिवीजन में आएगा, फिर उसके आगे बढ़ेगा। ये क्रम अपनाना चाहिए। तो जिनका योग आज तक हुआ नहीं है और वो उनको 8 घंटा लक्ष्य दे दिया जाए तो या तो होगा नहीं, फाइनली वो मान लेंगे ये अपना सब्जेक्ट नहीं है, या निराश रहेंगे, खुशी नहीं रहेगी, जो 4 घंटे योग भी कर रहे उसकी भी खुशी चेहरे पर नहीं आएगी कि 8 तो हुआ नहीं, आज तो 7:45 ही हुआ है। तो ऐसा सेंसिटिव भी हमें नहीं बनना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप रहो। मैं 8 घंटे की बात तो खैर दादी ने भेजी है वो ठीक है उमंग उत्साह के लिए, पर 4 घंटे स्मृति स्वरूप रहने का सबको लक्ष्य हो जाना चाहिए, उससे जीवन अच्छा हो जाएगा, परिस्थिति कम हो जाएंगी और हमें शिव बाबा की मदद बहुत मिलेगी।
जी, और 4 हो गया तो 8 तक पहुंचना भी इजी हो
इजी
जाएगा, एक विश्वास पैदा होता है। जैसे
हाँ,
गाड़ी की गियर भी हम एक एक
हाँ,
करके ही बदलते हैं, 1 से 2 फिर 3 4 5 की ओर ले जाते हैं, एक झटके में ही हम 5 में नहीं चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा क्रम से हम आगे जरूर बढ़ें। प्रति जी, ये है कि एक प्रश्न कि मुझ आत्मा के बाबा पर विश्वास को मेरे घर वाले वहम कहते हैं, उन्हें लगता है कि कुदरत ही सब कराती है, तो मैं उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि सचमुच बाबा है?
अब देखो संसार में तो मते मते भिन्न यहाँ क्या कहते हैं, वो भिन्न भिन्न मत वाले लोग हैं
जी जी।
अब किसी की कुछ मत है, किसी की कुछ, इन बातों की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये भी नहीं सोचना चाहिए मैं इन्हें विश्वास कैसे दिलाऊं। आपको अपने परिवार को यदि लाइन पे लाना है तो आपके चेहरे की चमक, आपके चेहरे की रूहानियत, आपके बोल में परिवर्तन, आपके क्रोध का शांत होना, ये उन पर गहरा प्रभाव डालेगा। आप उन्हें कुछ सुनाएं, इससे अच्छा होगा कि वो सुनने के लिए तैयार हो जाएं। और इसकी विधि यही है कि आपके जीवन को देखकर उनके सारे प्रश्न खत्म हो जाएं।
जी बाबा कहते हैं एक बल एक भरोसा निश्चय बुद्धि। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किन किन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निश्चय बुद्धि हमें बनना है? तो जैसे अभी एक कोरोना की बात है, कैसी कैसी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं जहां हमें अपने निश्चय को स्थिर रखना है?
देखिए कोरोना तो एक प्रकाश में आ गया है, बाकी कैंसर भी बहुत बढ़ा हुआ है, हार्ट के भी पेशेंट भी बहुत हैं दुनिया में, शुगर भी बहुत बढ़ी हुई है। हालांकि शुगर से लोग ऐसे दुखी तो नहीं होते क्योंकि शुगर तो एक स्लो पॉइजन है, लंबा समय में वार करता है, तब तक मनुष्य की आयु पूरी भी हो जाती है और थोड़ा ध्यान देंगे तो कंट्रोल में भी रहता है। लेकिन बीमारियों के अलावा और परिस्थिति, जैसे बच्चों की एजुकेशन खत्म होती जा रही है, अगर कोई बड़ी घटनाएं हो गई तो एजुकेशन पे तो पानी फिर जाएगा। बिजनेस धंधे, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये ऐसी समस्याएं हैं। इसके अलावा घर घर में कहीं झगड़े और मानसिक रोगों में वृद्धि, ये सब चैलेंजेज मनुष्य के सामने आते जाएंगे। अब एक घर में दो लोग मानसिक पीड़ा से पीड़ित हो गए तो उनको संभालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए पहले से ही अच्छे योग का अभ्यास करना, क्योंकि एक बल और एक भरोसे हम तब हो सकते हैं जब हमारा योग बहुत अच्छा हो, तभी हमें अच्छे अनुभव होते हैं। योग किसी का है नहीं और वो कहे मुझे तो बाबा पर विश्वास है, वो सब कुछ ठीक कर देगा, तो इसमें समय लग जाएगा, उसका निश्चय फिर डावाडोल होता रहेगा। इसलिए 4 घंटे योग अवश्य हो और अपने को बहुत पॉजिटिव रखना है। बाबा में विश्वास का अर्थ ये नहीं कि वो हमें मरने नहीं देगा, ये गलत लोगों का विचार है, वो तो आया ही है सबको ले जाने के लिए,
हमारी मौत सहज कर देंगे,
सब कुछ सहज कर देगा, हमारे जीवन की यात्रा को सहज कर देगा। उसकी मदद के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। देखो मान लो कोई पेशेंट है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और अगर आप योग युक्त हैं तो सहज प्राप्त हो जाएगी। इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, आप योग युक्त हैं तो सहज आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें विश्वास और उसको साथ लेकर चलना। अपने घर में 5 बार बाप दादा का आह्वान करें, पेशेंट को कहीं ले जा रहे हैं, घर से जा रहे हैं, बाबा का आह्वान करें। क्या अपने को परेशान न कर दें, ये सब कुछ भूल जाए, तो बाबा से जुड़े रहेंगे तो उसका बल मिलता रहेगा, इम्पोर्टेंट चीज। अगर जुड़े ही नहीं होंगे तो उसका बल कैसे मिलेगा, और जब बल ही नहीं मिलेगा, अनुभूति नहीं होगी, तो विश्वास तो डगमगाएगा ही। इसलिए ज्ञान की भी 2-4 पॉइंट अपने पास अच्छी तरह रखनी है, जैसे बाबा मेरी छत्र छाया है, बाबा कह रहे बच्चे चिंता ना करो मैं बैठा हूँ, बाबा कह रहे हैं बच्चे मन के सारे बोझ मुझे अर्पित कर दो, मेरे को तेरे में अर्पित कर दो। ऐसे कम से कम 5 पॉइंट तो अपने पास सदा रखनी चाहिए, जो हमें निश्चिंत रखे, तब उसके बल का अनुभव होगा, उसकी मदद का अनुभव होगा और उसमें विश्वास बना रहेगा।
बिल्कुल, मतलब ये है कि बाबा की मदद तो हो ही रही है, वो कर ही रहे हैं, बस हमें अपनी लाइन को क्लियर रखना है और उस मदद को जिस रूप में वो दे रहे हैं उसे रिसीव करना है, समझना है। थोड़ी थोड़ी में बेहतर जी, जो हमारे मेडिकल से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और भी जो इस प्रकार के, चाहे वो ज्ञान में हैं या नहीं भी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे इस दौर में जब उन्हें इतना वर्क करना पड़ रहा है अपने परिवार से दूर रह करके?
2 बातें मुझे कहनी है अपने डॉक्टर्स से। अप्रिशिएट तो सभी कर रहे हैं डॉक्टर्स की सेवाओं को, हम भी करते हैं सच्चे दिल से, संस्था की ओर से, ब्रह्मा कुमारी की ओर से, कि जो भी सब डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ या मैनेजमेंट है, निसंदेह सब लोग पूरा जोर लगा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि उसके पास पेशेंट आया है और वो चाहेगा कि ये ठीक ना हो। डॉक्टर्स तो चाहते हैं हर व्यक्ति ठीक हो, उनका भी नाम रोशन होगा इससे
जी।
तो जोर तो सब लगा रहे हैं लेकिन नियति का खेल कुछ और चल रहा है, उसको हम जानते हैं। इसलिए सभी डॉक्टर्स बधाई के पात्र हैं, अपने को भी संभाल के रखना है, अपने को बहुत पॉजिटिव रखना है। मैं देखता हूं, मान लो एक हॉस्पिटल से 10 डेड बॉडी एक दिन में निकल गई, तो डॉक्टर और नर्सेज सबके मन पे कैसा इफेक्ट होता होगा।
कि डॉक्टर्स को हमने को देख देखा कि बोलते बोलते आंसू आ गए उनको।
एक डेड बॉडी जाती है तो लोग भावुक को उठते हैं, रोज 10 निकल रही हो। इसलिए आप सभी महावीर हैं, अपनी इस महावीरता को कायम रखना। शिव बाबा से आप भी कनेक्ट हो जाना, वो आपका परम पिता है। ये स्मृति आप रखना कि भगवान मेरा पिता है, वो मेरा साथी है, वो मुझे सफल भी करेगा और मुझे कुछ नहीं होने देगा। दूसरी बात, मैं उन डॉक्टर्स को कहूंगा जो इस आपदा काल को कमाई का बहुत बड़ा जरिया समझ रहे हैं, मेरी तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि धन तो आपने बहुत कमा लिया होगा, धन किसी को साथ नहीं देगा, सब धरा का धरा रह जाएगा, दुआएं कमा लो। कोई गरीब आपके पास आ गया है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर आप उसका इलाज कर दो, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी, थोड़ा प्रॉफिट ले लो। लेकिन जो ये लूट खसोट चल रही है, अखबारों में आता रहता है, ऐसे ऐसे शब्द लिखे जाते हैं कि आश्चर्य होता है। थोड़ा सा दया भाव, थोड़ा सा लिबरल होकर अब मानवता की सेवा हम सबको करनी, आप कर रहे हैं, आप प्रशंसा के पात्र हैं, मैं और कुछ आपको नहीं कह रहा हूं। लेकिन जहां ये इस एक आपदा को धन कमाने का साधन बना लिया, इसको छोड़ दें। कई डॉक्टर्स ने छोड़ दिया है, मुझे बताते हैं कि हम तो फ्री इलाज कर रहे हैं, फ्री सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पास जो साधन है उनको भी फ्री दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी मानता है, और हमारा देश जो बहुत महान है, जिसकी संस्कृति बहुत महान है, जहां सेवा भाव दया भाव है, मैं अपने सभी डॉक्टर्स को और जो दान कर्मी लोग हैं उनको भी कहूंगा कि बहुत मदद करें गरीबों को, जितनों का आप जीवन बचा सके। अब तो केवल ठीक करने की बात नहीं, अब तो जीवन बचाने की बात हो रही है। जितना आप धन से भी सहयोग दे सके दें, बहुत बड़ा पुण्य जमा होगा, आप पाप आपका पाप का खाता ढीला होता जाएगा। हमें तो बहुत खुशी होती है जब सुनते हैं किसी गरीब मुस्लिम लड़के ने अपनी ऑटो को एक सिलेंडर रख दिया और फ्री ले जा रहा है पेशेंट को हॉस्पिटल में, लोग उसे फरिश्ता कह रहे हैं। किसी ने अपनी कार को ही वो बना दिया है पूरा आइसोलेशन सेंटर और उसमें वेंटिलेटर सेंटर बना दिया, ऑक्सीजन रख दिया, साधन रख दिए। बहुत बड़ी चीज है ये, हमारे देश की शान है, हमें ऐसे लोगों पे गर्व है। तो मैं सभी को कहूंगा ऐसा पुण्य करने का, अपने देश का नाम रोशन करने का, ये बहुत सुंदर समय है। ऐसा आप करेंगे तो परमात्मा मदद के पात्र बन जाएंगे, आप उसकी नजरों में आ जाएंगे और आपदा काल में वो आपका साथी बनकर रहेगा।
जी जी, ऐसे अच्छे अच्छे कार्य बहुत हो रहे हैं व्रता जी। हाँ। जैसे आपने कहा डॉक्टर्स भी हैं, आम आदमी भी सब जिस प्रकार से भी हो सकता है मदद करने में लगा हुआ है, टीम्स बन गई हैं जो शवों का दाह संस्कार भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे समाचार मिलते हैं। मुझे लगता है ऐसे अच्छे समाचारों की लेन देन मीडिया में और हम सब भी जरूर किया करें, क्योंकि बार बार बुरी खबर सुनते सुनाते हैं तो शायद एक डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। अच्छी खबरों की लेन देन जरूर करें।
देख रहे हैं कि चैनल्स ने भी वो सीन दिखाने कम कर दिए हैं, और जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है उसको तो दिखाना कर्तव्य है
जी।
लेकिन अच्छा काम जो कर रहे हैं, आ रहे हैं समाचार और ज्यादा उसको हाईलाइट करेंगे तो लोगों को मदद करने की प्रेरणा मिलेगी,
बिल्कुल विश्वास जागृत होगा। पूरे ब्राह्मण परिवार व्रता जी जो अभी जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या कहेंगे, किस प्रकार से योग की सकाश दें सारे विश्व को, संसार को, ताकि जल्दी आपदा समाप्त हो और अच्छे दिन आए।
पहले तो मैं कहूंगा जिनके पास धन है वो धन से सहयोग अवश्य करें, थोड़ा भी करें, क्योंकि बीमारियों में दूसरों को सहयोग देना भी स्वयं को बीमारियों से मुक्त रखने का साधन है। आपके पास थोड़ा है, थोड़ा भी लगाएं, किसी गरीब को मदद कर दें, दवाइयां दिलवा दें, और योगदान विशेष रूप से संसार को करें, क्योंकि योग के वाइब्रेशंस बहुत बड़ी शक्ति है, मुर्दे में जान भर सकते हैं, होपलेस केस को होपफुल बना सकते हैं, बिल्कुल निराशा के अंधकार में डूबे हुए मनुष्य को आशा का दीप दिखा सकते हैं। इसलिए बहुत जो बहुत अच्छे योगी हैं वो अपने योग को दान स्वरूप कर दें और सभी आत्माओं को राहत देने में स्पेशल जागकर भी सवेरे योगदान करें तो आपका बहुत बहुत भला होगा। आप विश्व सेवा में संसार को मदद करने में एक अहम भूमिका निभा पाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्रता जी। और ये कार्य विशेष सभी ब्राह्मण कुलभूषण कर ही रहे हैं, अभी देखने में आता है अमृत वेले भी सभी सामूहिक रूप से कर रहे हैं, शाम का योग कर रहे हैं, दिन में भी भट्टियां चल रही हैं और स्पेशली रात को भी सभी सामूहिक रूप से योगदान कर रहे हैं। तो ये कार्य और भी जोर शोर से करें ताकि सब कुछ जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। दिल से भ्रता जी आज के विषय पर जो आपने प्रकाश दिया उसके लिए शुक्रिया। बहुत ही गहन विषय है एक बल और एक भरोसे रहना, कितना महत्वपूर्ण है ना। मुझे एक बात एक प्रसंग याद आती है कि एक बार बहुत ही मौसम ऐसा हो गया कि घनघोर वर्षा हो रही है, एक व्यक्ति जिसे शाम को रोज ही अपने सुबह घर से निकलता था शाम को घर वापस आया करता था, बीच में एक नदी पड़ती थी, एक पुल था जो लकड़ी और रस्सियों से बना हुआ था, जड़जड़ी भूत सा था, पुराना सा था। आज इतनी तेज आंधी थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि उसे लगा कि मैं कैसे जाऊंगा। नदी के नजदीक वो पहुंचता है, देखता है कि वो जो पुल है जो पुराना ही हो गया है, वो जैसे आधा अधूरा टूट ही गया है, अब बड़ी मुश्किल से उस पार जाया जा सकता है, लेकिन जाना भी था। अब वो हिम्मत करके उस पे चल पड़ता है, जैसे ही बीच में पहुंचता है तो पुल बिल्कुल ही टूटने की स्थिति में आ जाता है। अब ऐसी स्थिति कि शायद वो अब नीचे जो एकदम उफनती हुई नदी है उसमें गिर ही जाए, दिल से वो ईश्वर को याद करता है कि प्रभु मेरी मदद कीजिए। तब वो देखता है कि दूसरी छोर पर प्रभु उन्हें दिखाई देते हैं। अब ये जोर जोर से चिल्लाता है कि प्रभु आप आ गए, आप बड़े धन्य हैं, मेरी मदद कीजिए, आप यहां आइए, मुझे बचाइए। लेकिन प्रभु वहीं खड़े रहते हैं, वो टस से मस नहीं होते। ये जोर जोर से चिल्लाता है कि आइए मेरी मदद कीजिए, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं और नीचे उफनती हुई नदी है। लेकिन फिर भी वो वहीं रहते हैं और उसकी ओर देख रहे होते हैं बड़े प्यार से। अब इनके मन में लगता है कि मैंने जीवन भर जिसकी आराधना की, पूजा की, और अभी मैं विपदा में हूं, मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। बहुत ही मन में उल्टे सीधे भाव आने लगते हैं, भगवान को भी वो बहुत कुछ कहने लगते हैं कि भगवान आप ऐसे हो वैसे हो, सचमुच लोग सही कहते हैं कि आप बहरे हो, आप सुन नहीं रहे हो, मैं विपदा में हूं। अब जैसे तैसे करके वो हिम्मत जुटा के धीरे 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 करके आगे बढ़ता है और उस छोर पर पहुंचता है। जैसे ही छोर पर चढ़ता है उसके मन में होता है कि मैं बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं, जैसे ही वहां पहुंचूंगा ना, बच तो गया हूं, भगवान को खूब भला बुरा कहूंगा कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कोई मदद नहीं करते हो। कि जैसे उस पर पहुंचता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भगवान की चरणों में आ जाता है, क्योंकि वो देखता है कि केवल एक ही लकड़ी और रस्सी ऐसी बची हुई है जिसके निकलते ही वो पूरा का पूरा पुल धराशायी हो जाता और उसे भगवान ने बड़े जोर से पकड़ा हुआ था कि ये जो है मेरा बच्चा वो वहां से सकुशल वापस आ जाए। यदि ये छोड़ के वहां जाते, छोड़ते तो वो तो नीचे ही चला जाता ना। तो ईश्वर की ये जो मदद है हम नहीं समझ पाते। मुझे लगता है कि जब हम नजदीक पहुंचते हैं, उसके समीप पहुंचते हैं, तब हम जान पाते हैं कि वो कैसे हमारी मदद करते हैं, वो हमसे कितना प्यार करते हैं। तो इस समय भी हम दिल से एक बल एक भरोसा रहते हुए, एक नामी रहते हुए, न केवल अपने निश्चय को परिपक्व करें लेकिन औरों के भी निश्चय को बल प्रदान करें, उसके साथ रहें, साक्षी होकर भले देखें हर चीज को लेकिन सकाश भी देते चलें। तो आप स्वस्थ रहें, मनसा सेवा और तपस्या में व्यस्त रहें, बाबा की याद में भी आप बहुत मस्त रहें, अपनों का और अपना विशेष करके ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये दौर ऐसा है जबकि सारे संसार को, विश्व परिवार को हमारी बहुत बहुत आवश्यकता है। भक्त आए गहन तपस्या करें, एक नामी होकर सारे विश्व को इस विपदा से जल्द बाहर निकालें। ओम शांति। चले अब एक बाबा की याद में हम सब समा जाएंगे।
अब तेरे भी